मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी एक्सपोजिटरी हिंदी उर्दू पॉडकास्ट रूह की बेदारी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मत्तियुस का 2 बाब उसकी 13 से 23 आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें यूं लिखा है, जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक कि मैं तुझ से ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो निहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतुलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो दो दो बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यर्मिया नबी की मार्फत की गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और मातम, राहल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं रहे। जब हेरोदीस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क को चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया, मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदीस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहाँ जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। आज हमने हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की बचपन की तारीखी कहानी का जिक्र खुदा के कलाम से देखा। बस जिसके कान हो वो सुने कि खुदावंद का रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए, तेरी इस आवाज़ के लिए और तेरे लोगों के लिए खुदावंद, जिनके लिए तूने ये अपना कलाम बख्शा। खुदावंद हमें तौफीक बख्श कि ना सिर्फ हम सुने बल्कि इसे अपनी ज़िंदगियों में लाएं, इस पर अमल करें और अपनी आने वाली जनरेशन, अपनी आने वाले बच्चों को भी खुदावंद इसी की ताकीद करें, ताकि तेरा नाम हमारे और हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगियों में जलाल पाए। आमीन। हमने कलाम का जो हवाला पढ़ा इसमें मत्ती रसूल के वसीला से ये बताया जा रहा है कि जब मजूसी रवाना हुए तो खुदा का फरिश्ता यूसुफ के ख्वाब में आता है, जबकि लूका की अंजील में हम जिब्राइल फरिश्ते का बारहा ज़हूर देखते हैं जो पहले ज़करिया पर और फिर मरियम पर ज़ाहिर होता है। दूसरी तरफ मत्ती की अंजील में फरिश्ते का ज़हूर अमूमन यूसुफ के ख्वाब में दिखाई देता है। जैसे हम पिछले सेशंस में देख चुके हैं कि मत्ती की अंजील मकद्दस यूसुफ के पर्सपेक्टिव से लिखी गई, जबकि लूका की अंजील मकद्दसा मरियम के बयान के मुताबिक बयान की गई है। यसु मसीह की पैदाइश ही से हम फरिश्तों के जहूर की बहुत बड़ी अलामात देखते हैं, और क्योंकि यसु मसीह की पैदाइश के आगाज से ही फरिश्तों के जहूर का जिक्र ज्यादा मिलता है, इसलिए जदीद दौर के कई तनकीदियों का कहना है कि यसु मसीह की पैदाइश सिर्फ एक अफसाना थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना था। लेकिन नए अहदनामे में फरिश्तों का जिक्र गुनाहों के जिक्र से ज्यादा है। लफज फरिश्ता जो नए अहदनामे में बार बार मिलता है वो नए अहदनामे के लफज अगापे यानी जो मोहब्बत के लिए लफज इस्तेमाल किया गया है उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि नए अहदनामे में फरिश्तों के जिक्र की तादाद गुनाहों और मोहब्बत के जिक्र से कहीं ज्यादा हमें मिलती है। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि नया अहदनामा जदीद दौर के तनकीदियों के नुक्ता नजर की तरह एक अफसानवी कहानी है। इसका असल मतलब यह है कि नया अहदनामा खुदा की वो हकीकत है जिसे वो अपने फरिश्तों, निशानात और मौजजात के जरिए जाहिर करता है। हकीकत तो यह है कि हम यस्सु मसीह की पैदाइश और जिंदगी को बगैर फरिश्तों के जहूर के बयान नहीं कर सकते, क्योंकि फरिश्तों ने यस्सु की पैदाइश और जिंदगी की हकीकत में खास अहम किरदार अदा किया है। हम जानते हैं कि यस्सु की आजमाइशों में से एक आजमाइश में शैतान यस्सु को आजमाते हुए ये कहता है कि तू हैकल के किंगरे यानी ऊंची जगह से छलांग लगा दे ताकि साबित हो सके कि तू वाकई खुदा का बेटा है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें ताकि तुम्हें कोई जर ना पहुंचे। दूसरी तरफ हम इस आजमाइश में यस्सु मसीह का जवाब जो खुदावन यस्सु मसीह ने शैतान को इबलीस को दिया उसको भी बखूबी जानते हैं। चनाचा यस्सु मसीह की पूरी जिंदगी फरिश्तों की खुदाई तहफ़ में गुजरी, हत्ता के सलीब के वक्त भी जिस पर उसने खुद को रजा कराना तौर पर पेश किया उसमें ऐलान किया गया अगर वो चाहे तो आसमान से फरिश्तों की एक बड़ी फौज को बुला सकता है ताकि वो उसकी तरफ से लड़े। मैं ये कह सकता हूं कि फरिश्तों की एक बड़ी फौज उस वक्त सलीब पर यस्सु मसीह के पास थी जो खुदावंत के हुक्म का इंतजार कर रही थी कि अगर वो उन्हें हुक्म देता तो उसे फौरन सलीब से उतार लेते और दुश्मनों को उनकी फौजों के साथ तबाह कर देते। लेकिन हम जानते हैं कि यस्सु ने अपने लोगों के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी मुनासिब समझी और उसने ऐसा होने की इजाजत ना दी बल्कि सलीब को एक आजज इंसान की तरह कबूल किया ताकि वो खुदा की उस रास्तबाजी को पूरी करे जो रास्तबाजी मेरे और आपके खित्ते में थी कि हम लोग वो रास्तबाजी जाहिर करें। इसी तरह जब हम मत्ती 2 उसकी 13 पढ़ते हैं तो उसमें यूं लिखा है कि जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक कि मैं तुझ से ना कहूं वहीं रहना क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। हम इस आयत में देखते हैं कि अगरचा यस्सु को मारने के लिए हेरोदीस की तरफ से फौज निकली मगर खुदा ने अपने फरिश्तों के जरिए यस्सु मसीह को महफूज रखा। बाइबल यह भी बयान करती है कि फरिश्ता यूसुफ के ख्वाब में आता है और कहता है कि उठ और बच्चे को और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा। यहां एक चीज जो बहुत गौर करने वाली है वो ये है कि फरिश्ते की तवज्जो और ज्यादा जोर बच्चे पर है ना कि उसकी मां पर। इसकी 2 हो सकती हैं मेरे अजीजों। पहली ये कि यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है और अपने लोगों का मसीहा है। दूसरी वजह यह है कि खतरा बच्चे को उसकी मां से कहीं ज्यादा था क्योंकि हेरोदीस और उसकी फौज इस बच्चे को मारने के लिए निकली थी। यहूदी तारीख में यह वो वक्त था जिसमें मिस्र यहूदियों के लिए एक महफूज पनाहगाह था जो रोमी हुकूमत और खास तौर पर हेरोदीस बादशाह के जालमाना हुकुमरानी से बचकर वहां पनाह लेने को महफूज ठिकाना समझा जाता था। और उस वक्त जब मरियम और यूसुफ मिस्र को निकले तो सिर्फ इस्कंदरिया जो मिस्र का एक कदीम मिस्र का एक शहर है इस्कंदरिया के शहर में ही तकरीबन 10 लाख से ज्यादा यहूदी पहले से आबाद थे। चनाचा जब यूसुफ और मरियम मिस्र को भागते हैं तो वो घूमते हुए पनाह की जगह नहीं ढूंढते बल्कि अपने ही लोगों में गए और जो पहले से वहां यहूदी मौजूद थे उन्हीं में जाकर आबाद हुए और जब तक खुदा का अगला हुक्म ना आया आगे निकलने को वो उन्हीं में रहे। हम में से जो फौज और इसके असूलों से वाकिफ हैं वो सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के बारे में जरूर जानते होंगे, यानी वो मिशन जिसमें हेरोदीस बादशाह ने अपनी फौज को भेजा कि बच्चा यस्सु को जहां भी पाए फौरन मार दें। मैं बताता चलूं कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन एक ऐसा मिशन होता है जिसमें फौजी अपने दफा के लिए नहीं लड़ता और ना ही अपने दुश्मन को जिंदा पकड़ने के लिए, बल्कि इसे हुक्म दिया जाता है कि दुश्मन को ढूंढे और वहीं पर खत्म कर दे, वहीं पर मार दे जहां पर वो उसे ढूंढे। ये एक बहुत खतरनाक मिशन होता है और ये मिशन जो हेरोदेस बादशाह ने फौज को दिया किसी कौम या किसी दूसरी फौज के खिलाफ नहीं था, जिसमें फौजी दूसरे हथियारबंद फौजियों के साथ लड़ता है और उन्हें ढूंढते हुए वहीं पर मार देता है जहां उन्हें पाता है, बल्कि ये ऐसा मिशन था जो एक निहत्ते मासूम बच्चे के खिलाफ निकाला गया कि जहां कहीं उसे ढूंढे उसे मार दें। मेरे अजीजों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेरोदीस के अंदर कितनी इंसानियत और रहम दिली होगी जो इस कदर खतरनाक और सीरियस मिशन एक निहत्ते मासूम बच्चे के खिलाफ जारी कर रहा था। बेशक वो एक ऐसा शरीर और जालिम इंसान था जिसके अंदर खुदा का कोई खौफ ना था। यहूदी तारीख के मुताबिक इस मिशन के नतीजे में तकरीबन 12 से 15 मासूम बच्चों को कत्ल किया गया, क्योंकि अंदाजा लगाया जाता है कि इस वक्त बैतलहम में जितने भी दो या दो से कम उम्र के लड़के थे उन सबको हेरोदीस की तरफ से कत्ल करवा दिया गया था। अगरचा तारीख जहां हेरोदीस की बाकी बर्बरियत और जुल्मों सितम के बारे में बयान करती है, वहां इस वाकया यानी बैतुलहम में बच्चों के कत्ल के वाकया को नजरअंदाज करती है। और सेकुलर हिस्टोरियंस इस वाकया को हिस्ट्री में ना पाते हुए इस चीज पर सवाल करते हैं, यानी वो जो बाइबल पर तनकीद करते हैं उन लोगों को एक और मौका मिल जाता है ये कहने का कि क्योंकि हिस्ट्री इस बारे में चुप है, लिहाजा मत्ती रसूल ने जो बयान किया वो सिर्फ एक अफसानवी कहानी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मगर मेरे अजीजों, अगर आप हेरोदीस की जिंदगी के बारे में पढ़ें तो ये वाकया इसके किए गए बाकी तमाम गुनाह और जुल्मों सितम के आगे बहुत छोटा सा मालूम होता है। तारीख ये बताती है कि हेरोदीस की 10 बीवियां थी, जिनमें से दो को इसने खुद ही मार दिया और इन दो में से एक वो थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। मजीद इसने अपने ही 3 बच्चों समेत बहुत से और खानदान के अफराद को कत्ल करवाया। वो एक बदबख्त, खुदगर्ज और इस कदर जालिम इंसान था कि जब इसे पता चला कि इसकी मौत नजदीक आ गई है तो इसने ये हुक्म जारी किया कि इसकी मौत के दिन पूरे यरूशलम में हर एक यहूदी के घर से एक फर्द को कत्ल किया जाए, ताकि इसकी मौत का दिन पूरे यरूशलम में एक सोग के दिन पर मनाया जाए और याद किया जाए। अगरचा इसके मरने पर इस हुक्म पर अमल ना किया गया, पर इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये शख्स किस कदर जालिम और बदनीयत किरदार का हामिल था। वो एक ऐसा बदबख्त और शरीर इंसान था जो अपने फायदे और नफा के लिए किसी की भी जान ले लेता। बेशक तारीख इसे हमेशा इसके कामों को देखते हुए बुरे अल्फाज में ही याद करेगी। लिहाजा आगे हेरोदीस के मरने के बाद इसकी सल्तनत 4 हिस्सों में इसके बेटों में तकसीम की गई और यरूशलम का हिस्सा इसके बेटे अरखलाउस के पास आया, जिसका जिक्र हमें आगे 12वीं आयत में मिलता है। अगरचा वो भी अपने बाप की तरह बदनीयत था, पर वो इस काबिल ना निकला कि हुकूमत को बेहतर तरीके से संभाल सके। चनाचा इस उसकी कारगर्दगी को देखते हुए रोमी हुकूमत की तरफ से इसको जल्द ही नाहल करार दे दिया गया और किसी और को इसकी जगह पर सल्तनत अता कर दी गई। आगे अगर हम 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें तो उसमें कुछ यूं लिखा है यूसुफ के बारे में, पस वो उठा और रात के वक्त बच्ची और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। ये एक निहायत ही हैरान कर देने वाला कलाम का एक खास हवाला है, क्योंकि ये जो हवाला हमें यहां आयत 15 में दिया जा रहा है वो होसिया नबी की मार्फत खुदा का कलाम है, जिसमें बनी इसराइल कौम को खुदा का बेटा कहा गया है। खुदा अपने बेटे यानी बनी इसराइल को मुल्के मिस्र से यानी गुलामी से निकालता है, और यहां वही हवाला यसु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये दो अलग वाक्यात जो हैं वो एक ही हवाले में पुरोए जा रहे हैं। मत्ती रसूल हमें इस हवाले को काउंट करते हुए क्या साबित करना चाह रहा है? तो मेरे अजीजों, इसका मतलब वही है जो खुदा का कलाम हमें मत्ती रसूल के जरिए बता रहा है, यानी कि जो खरूज इसराइल का मुल्क मिस्र से हुआ वो मुकम्मल खरूज नहीं था, बल्कि वो खरूज यसु मसीह के मिस्र से निकलकर वापस इसराइल जाने पर मुकम्मल हुआ। इसके अलावा पुराने हदनामे में खुदा के बेटे का लकब कौम इसराइल को दिया गया, जबकि वो सिर्फ एक अक्स था यसु मसीह का, जो यसु मसीह की पैदाइश में एक हकीकत के तौर पर हम पर यानी उसके लोगों पर जाहिर हुआ। लिहाजा खुदा के बेटे का लकब जो कौम बनी इसराइल को एक शख्स के तौर पर दिया गया था, वो यसु मसीह में पूरा हुआ। अगरचा हम बाइबल के पुराने अहदनामे का अच्छे तरीके से मुतालिया करें तो हमें यह मिलता है कि पुराना अहदनामा यसु मसीह के बारे में बारहा जिक्र करता है, यहां तक कि पूरा अहदनामा यसु मसीह का एक 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 प्रॉपर अक्स पेश करता है जिसकी हकीकत नए अहदनामे में जाहिर होती है। बल्कि इसी तरह जैसे पुराने अहदनामे में खुदावंत के खेमा का जिक्र बार बार पढ़ने को मिलता है, जिसका मतलब यह है कि खुदा अपने लोगों में मौजूद है और ये एक अक्स था जिसकी हकीकत हमें यसु मसीह की जिंदगी, मौत और दोबारा जी उठने में मिलती है। जैसे उसकी पैदाइश में बयान किया गया है कि जब यसु मसीह की पैदाइश होती है तो उसे इमैनुएल नाम दिया गया, जिसका मतलब है खुदावंत हमारे साथ है, यानी खुदावंत का खेमा अपने लोगों में है। और यही बात यसु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तो जब वो अमाउस के रास्ते पर अपने शगिर्दों पर जाहिर हुए तो उन पर जाहिर कर रहे थे कि पुराना अहदनामा बारहा सिर्फ उसी के बारे में बयान करता है। लिहाजा हम नया अहदनामा को कभी भी नहीं समझ सकते अगर हम पुराने अहदनामे को नहीं समझते, और ना ही हम पुराने अहदनामे को समझ सकते हैं जब तक कि हम नए अहदनामे को ना समझें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़े हैं कि इनको अलहदा नहीं किया जा सकता। आगे 16वीं आयत में कुछ यूं लिखा है कि जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी बेचकर बैतुलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो दो दो बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। चनाचा हेरोदीस ने जब जाना कि मजूसियों ने उसे धोखा दिया तो वो गुस्से और कहर से भर गया और गुस्से में यह हुक्म दिया कि बैतुलहम के सारे इलाके में जाओ और जितने भी 2 साल या इससे कम उम्र के लड़के मिलते हैं उन सबको कत्ल कर दो, और इसके इस जालमाना हुक्म पर अमल किया गया। और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि यर्मिया नबी की मार्फत कलाम पाक में बयान किया गया है कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राहल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। नबी यहां पर बयान करता है कि रीचल यानी राहल अपने बच्चों को रो रही है। यह हवाला यहूदियों के मुल्क मिस्र में गुलामी के बारे में बयान करता है। अगरचा राहल को इस वक्त मरे हुए भी एक अरसा गुजर चुका था, पर नबी यहां जो बयान कर रहा है वो ये है कि राहल अपने बच्चों यानी इसराइलियों को रो रही है, क्योंकि वो अब गुलामी में कैद हैं, वो अब गुलामी की मौत में हैं। और यह हवाला यह भी बयान करता है कि जैसे बनी इसराइल पर गैर कौम ने जुल्म व सितम किए उस मिस्र की गुलामी के दौर में, और राहल के बच्चों को अपना गुलाम यानी बंदी बना लिया, उन्हें मारा और कत्ल किया, बिल्कुल इसी तरह रोमी हुकूमत ने भी एक नई गैर यहूदी इंसान को, एक यहूदी कौम पर बादशाह मुसल्लत करवाया जो उसके बच्चों को मारता है, और जिसमें रीचल यानी राहल अपने बच्चों को जिनको बैतलहम में कत्ल किया गया उनके लिए रोती है। आगे हम आयत 19 और 21 पढ़ें तो उसमें यूं लिखा है, जब हेरोदीस मर गया तो देखो कि खुदावंत के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ इस बच्चे और इसकी मां को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि बच्चे की जान के ख्वाह क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया। चनाचा हम देखते हैं कि यूसुफ फरिश्ते के हुक्म को मानते हुए मिस्र से वापस इसराइल आता है और गलील के शहर नासरत में आबाद होता है, ताकि नबियों की मार्फत जो लिखा गया था वो पूरा हो के यस्सु नासरी कहलाएगा। अब गौर कर रहे हैं कि खुदा का कलाम किस तरह खुदा की मर्जी से अपने वक्त के मुताबिक पूरा हो रहा है, और यही वजह है कि मसीहत किसी इंसानी मजहब का नाम नहीं बल्कि ये खुदा बाप की मर्जी जो यस्सु मसीह की पैदाइश मौत और जी उठने में पूरी होती है इस हकीकत को बयान करती है, ताकि इसके लोग निजात पाएं और इसकी हकीकत को आगे बयान करें। और यही चीज मसीहत को इनफरादी यानी दुनिया के तमाम मजाहब से अलग करती है। चनाचा मसीहत सिर्फ एक मजहब नहीं जिसे देखकर दुनिया के इंसानों ने अपने मजाहब बनाए, बल्कि मसीहत एक हकीकत है जो यस्सु मसीह में गुनाहगार इंसानों तक पहुंची, ताकि हम खुदा के साथ अपने रिश्ता को बहाल कर सकें जो गुनाह की वजह से टूट चुका था। और खुदावंद यस्सु मसीह का शुक्र जिसने अपनी जान के फिदिये के वसीला से हमें यानी अपने लोगों को गुनाह की लानत से आजाद किया और खुदा बाप के साथ मिलाया, ताकि हम हलाक ना हो बल्कि यस्सु मसीह में हमेशा की जिंदगी पाए। आए हम दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे इस कलाम के लिए वापस मानी जो तूने हमें बख्शा, हमें ये तौफीक बख्श खुदावंत कि ये कलाम हमारे दिल और गुर्दों में बसे, और खुदावे हम हमें वो तक ये तौफीक बख्श कि खुदावंत हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि खुदावंत तेरा नाम तमाम कौमों में तमाम जनरेशन में खुदावंत हमेशा के लिए पाक माना जाए। आ खुदावंत हम सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।